एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। तो आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जिसने न सिर्फ जीव विज्ञान बल्कि हमारे सोचने के तरीके को भी काफी बदला है।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं रिचर्ड डॉकिंस की बहुत ही जानी मानी और हाँ थोड़ी विवादास्पद किताब द ब्लाइंड वॉचमेकर, मतलब अंधा घड़ीसाज।
हाँ, और ये किताब एक बहुत ही बुनियादी, बहुत गहरे सवाल से शुरू होती है। जब हम अपने आसपास प्रकृति को देखते हैं, इंसान की आंख ले लीजिए, कितनी जटिल है, या फिर चमगादड़ का वो इकोलोकेशन वाला सिस्टम,
कमाल का है वो तो,
है ना? तो क्या ये सब देखकर लगता है कि किसी ने इसे डिजाइन किया है, किसी बुद्धिमान रचनाकार ने, या फिर इसका कोई और वैज्ञानिक कारण है?
और ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है क्योंकि ये विज्ञान और कह सकते हैं आस्था के बीच की जो बहस है वो तो चलती रहती है।
सही।
पर जो विकासवाद का सिद्धांत है ना, उसका एक जबरदस्त बचाव है और डॉकिंस ने इसे बहुत साफ और दमदार तरीके से पेश किया है।
तो चलिए शुरू करते हैं दिलचस्प सफर। सबसे पहले थोड़ा रिचर्ड डॉकिंस के बारे में बात करते हैं। कौन है ये और इस विषय पर इनकी बात इतनी अहम क्यों मानी जाती है?
रिचर्ड डॉकिंस वो ब्रिटेन के एक बहुत प्रसिद्ध इथोलॉजिस्ट है, मतलब जो जीवों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, और विकासवादी जीव विज्ञानी भी। जब उन्होंने 1986 में द ब्लाइंड वॉचमेकर लिखी, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, और उनकी पिछली किताब द सेल्फिश जीन जो 1976 में आई थी, उससे तो वो पहले ही काफी मशहूर हो चुके थे।
हाँ, द सेल्फिश जीन, उसने तो पूरा नजरिया ही बदल दिया था। विकास को जीन के लेवल पर देखना कि जीव बस जीन को आगे बढ़ाने का जरिया है, वो भी काफी क्रांतिकारी विचार था।
बिल्कुल, और डॉकिंस की खासियत सिर्फ उनका गहरा वैज्ञानिक ज्ञान ही नहीं है बल्कि जो मुश्किल वैज्ञानिक आइडियाज होते हैं ना, उन्हें आम लोगों तक पहुंचाने का उनका तरीका कमाल का है।
हाँ, वो उपमाएं और उदाहरण जो देते हैं।
हाँ, जबरदस्त उपमाएं, रूपक और वो थॉट एक्सपेरिमेंट्स यानी विचार प्रयोग, ऐसा लगता है जैसे विज्ञान की कहानी सुन रहे हो। द ब्लाइंड वॉचमेकर इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है।
तो ये किताब द सेल्फिश जीन से कैसे जुड़ी है? मतलब क्या ये उसी का अगला भाग है?
एक तरह से कह सकते हैं अगर द सेल्फिश जीन ये बताती थी कि विकास कैसे काम करता है, मतलब जीन के स्तर पर, तो द ब्लाइंड वॉचमेकर इस सवाल का जवाब देती है कि जीवन की ये जो अविश्वसनीय जटिलता है उसका एकमात्र तार्किक वैज्ञानिक स्पष्टीकरण प्राकृतिक चयन से होने वाला विकास ही क्यों है।
अच्छा,
ये डार्विनवाद का उनका सबसे मजबूत डिफेंस है, खासकर उन विचारों के खिलाफ जो मानते हैं कि जीवन किसी अलौकिक शक्ति ने, किसी डिजाइनर ने बनाया है।
ठीक है, तब आते हैं किताब के मूल तर्क पर। ये ब्लाइंड वॉचमेकर, अंधा घड़ीसाज, ये आइडिया क्या है और वो जो पुराना घड़ीसाज वाला तर्क था उससे ये कैसे अलग है?
हाँ, वो विलियम पेले का तर्क था, काफी पुराना, करीब 200 साल हो गए। उनका कहना था जैसे आपको जमीन पर एक घड़ी मिले, इतनी जटिल चीज, तो आप फौरन समझ जाएंगे कि भाई इसे किसी घड़ी साज ने बनाया है।
हाँ, स्वाभाविक है।
तो वैसे ही जब हम जीवों को देखते हैं, उनकी आंखें, उनके पंख इतने जटिल, तो हमें मानना चाहिए कि उन्हें भी किसी दिव्य रचनाकार ने बनाया है।
सुनने में तो बहुत सीधा और सहज तर्क लगता है ना? हमारी आंखें या पक्षियों के पंख इतने परफेक्ट लगते हैं कि लगता है किसी ने सोच समझकर डिजाइन किया होगा।
बिल्कुल, और डॉकिंस इसी सहज लगने वाले तर्क को चुनौती देते हैं। वो मानते हैं हाँ, जीवन की जटिलता वाकई हैरान करने वाली है और इसके लिए एक स्पष्टीकरण चाहिए, ये भी सही है। लेकिन वो स्पष्टीकरण कोई बुद्धिमान, कोई दूरदर्शी डिजाइनर नहीं है। वो घड़ीसाज तो है पर वो अंधा है।
अम्मा घड़ीसाज।
हाँ, यही है प्राकृतिक चयन,
नेचुरल सिलेक्शन।
अंधा क्यों कहा इसे?
अंधा इसलिए क्योंकि इस प्रक्रिया का कोई इरादा नहीं होता, कोई प्लान नहीं होता, कोई आगे का लक्ष्य नहीं होता कि मुझे आंख बनानी है।
अच्छा,
ना ही इसमें कोई चेतना है। ये बस एक ऑटोमेटिक स्वचालित प्रक्रिया है जो पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले छोटे छोटे बदलावों पर काम करती है। ये आगे नहीं देखती कि क्या बनने वाला है, बस जो उस वक्त काम करता है उसे चुन लेती है।
लेकिन यहीं पे सवाल उठता है, अगर ये प्रक्रिया अंधी है, बिना किसी प्लान के काम करती है, तो फिर इतनी जटिल और काम की चीजें जैसे आंख या पंख, ये बन कैसे जाती है?
ये तो फिर संयोग जैसा नहीं हो गया? और क्या सिर्फ संयोग से इतनी जटिलता आ सकती है?
बिल्कुल सही सवाल, और यही डॉकिंस अपना सबसे जरूरी आइडिया लाते हैं जिसे वो कहते हैं संचयी चयन,
क्यूमुलेटिव सिलेक्शन।
संचयी चयन।
हाँ,
वो कहते हैं कि विकास सिर्फ एक बार का संयोग नहीं है, मतलब सिंगल स्टेप चांस नहीं है, ये वैसा नहीं है कि कोई बवंडर आए और कबाड़ खाने में पड़े पुर्जों से अपने आप एक हवाई जहाज बन जाए, वो तो असंभव है।
हाँ, वो तो नामुमकिन है।
विकास असल में छोटे छोटे लगातार होने वाले बदलावों का जमावड़ा है, संचय है।
इसको थोड़ा और समझाएंगे, संचयी चयन काम कैसे करता है असल में?
डॉकिंस इसे समझाने के लिए एक बहुत ही मशहूर कंप्यूटर प्रोग्राम का उदाहरण देते हैं, शायद सुना भी हो, मिथिंक्स इट इज लाइक अ वीजल वाला।
हाँ, सुना है।
तो मान लीजिए कंप्यूटर को अक्षरों की एक बिल्कुल बेतरतीब स्ट्रिंग से शुरू करके ये वाक्य बनाना है। अगर कंप्यूटर हर बार पूरी तरह नए सिरे से कोशिश करे, एकदम रैंडम तरीके से अक्षर चुने, यानी एक चरणीय चयन, तो उसे सही वाक्य तक पहुंचने में कितने साल लगेंगे? अरबों खरबों साल, शायद ब्रह्मांड की उम्र से भी ज्यादा।
हाँ, ये तो लगभग नामुमकिन ही लगता।
लेकिन डॉकिंस का जो प्रोग्राम है वो अलग तरह से काम करता है। वो एक रैंडम वाक्य बनाता है, फिर देखता है कि कौन से अक्षर सही जगह पर आ गए हैं।
अच्छा,
उन सही अक्षरों को वो लॉक कर देता है। अगली पीढ़ी में वो सिर्फ गलत अक्षरों को रैंडमली बदलता है, सही वाले वैसे ही रहते हैं। और ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। हर बार जो थोड़ा सा भी सुधार होता है उसे बनाए रखा जाता है।
तो मतलब हर स्टेप पे जो थोड़ा सा भी सही हुआ उसे पकड़ लिया और फिर आगे बढ़े।
बिल्कुल। और इस तरीके से वो कंप्यूटर प्रोग्राम हैरान करने वाली तेजी से शायद कुछ ही दर्जन पीढ़ियों में अपने लक्ष्य वाक्य तक पहुंच जाता है।
अरे वाह,
यही है संचयी चयन की ताकत। और प्राकृतिक चयन भी, डॉकिंस कहते, ऐसे ही काम करता है। हर पीढ़ी में जीवों में छोटे छोटे रैंडम बदलाव होते हैं, उत्परिवर्तन या म्यूटेशंस कहते हैं जिन्हें। क्रिया लाखों करोड़ों सालों तक चलती रहती है, हर पीढ़ी में थोड़ा थोड़ा सुधार जमा होता जाता है, संचित होता जाता है।
अच्छा,
इस तरह धीरे धीरे, बिना किसी इरादे के, बिना किसी प्लान के, आंख जैसी जटिल चीजें भी बन सकती हैं। शुरू में शायद बस एक हल्की सी प्रकाश संवेदी कोशिका रही होगी, वो भी कुछ ना होने से तो बेहतर थी।
सही बात है।
फिर धीरे धीरे उसमें लेंस बना, पुतली बनी और चीजें जुड़ती गईं। हर कदम पर थोड़ा अतिरिक्त फायदा मिलता गया।
ये संचयी चयन का आइडिया तो वाकई बहुत शक्तिशाली है। ये समझाता है कि बिना डिजाइनर के भी जटिलता कैसे आ सकती है। डॉकिंस किताब में और क्या तर्क देते हैं इसके समर्थन में?
वो जेनेटिक्स की बात करते हैं, आनुवंशिकी की, डीएनए की। वो समझाते हैं कि डीएनए एक डिजिटल कोड जैसा है। इसमें जीव को बनाने की सारी जानकारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। और ये जानकारी किसी बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट जैसी नहीं है, बल्कि किसी डिश की रेसिपी जैसी है।
रेसिपी और ब्लूप्रिंट, इसमें क्या फर्क है इस संदर्भ में?
देखिए, ब्लूप्रिंट में तो हर चीज का अंतिम रूप बिल्कुल तय होता है ना? लेकिन रेसिपी में अगर आप छोटे छोटे बदलाव करें, जैसे थोड़ा नमक कम या ज्यादा, या पकाने का समय थोड़ा बदल दें, तो अंतिम डिश पर काफी असर पड़ सकता है।
बिल्कुल।
इसी तरह डीएनए में होने वाले छोटे छोटे बदलाव, जिन्हें हम उत्परिवर्तन या म्यूटेशंस कहते हैं, वो जीव के शरीर या उसके व्यवहार में बड़े बदलाव ला सकते हैं। और यही बदलाव है जिन पर प्राकृतिक चयन काम करता है। ये उसके लिए कच्चा माल है।
अच्छा, और डॉकिंस ये भी कहते हैं कि विकास कोई भी रास्ता अपना सकता है। मतलब वो एनिमल स्पेस वाली बात क्या थी?
हाँ, वो एक कल्पना करते हैं एनिमल स्पेस की। सोचिए, एक बहुत बड़ा विशाल गणितीय स्पेस है जिसमें हर तरह के संभव जानवर हो सकते हैं। विकास इस स्पेस में एक यात्रा की तरह है, लेकिन ये कोई सीधी सड़क नहीं है, ये टेढ़े मेढ़े रास्तों से होती है। क्योंकि हर कदम पर, हर बीच की अवस्था में जीव को जिंदा रहना और बच्चे पैदा करने लायक होना जरूरी है।
सही।
आप सीधे चूहे से उड़कर हाथी नहीं बन सकते, बीच के सारे कदम भी चलने लायक, मतलब वायबल होने चाहिए।
किताब में विकास की रफ्तार पर भी बात हुई है ना, कि क्या यह हमेशा धीमी और स्थिर होती है या कभी कभी तेज भी हो जाती है?
हाँ, ये एक बहस का मुद्दा रहा है जीव विज्ञान में। इसे ग्रेजुअलिज्म बनाम पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम कहते हैं। मतलब, क्या बदलाव हमेशा धीरे धीरे होता है, या फिर लंबे समय तक स्थिरता रहती है और फिर अचानक तेजी से बदलाव आ जाता है?
और जीवाश्म रिकॉर्ड्स क्या दिखाते?
कुछ जीवाश्म रिकॉर्ड दिखाते हैं कि प्रजातियां लंबे समय तक लगभग एक जैसी रहती हैं, फिर अपेक्षाकृत कम समय में बदल जाती हैं। डॉकिंस का मानना है कि ये डार्विनवाद का खंडन नहीं करता।
अच्छा, कैसे?
उनका तर्क है कि जो भूवैज्ञानिक समय के पैमाने पर तेज या अचानक लगता है, वो भी इंसानी नजरिए से देखें तो हजारों या लाखों साल का, यानी हजारों पीढ़ियों का धीमा बदलाव हो सकता है। तो मूल सिद्धांत वही रहता है, क्रमिक परिवर्तन, संचयी चयन।
समझ गया। और वो इस बात पर भी जोर देते हैं कि सारे जीव जंतु आपस में जुड़े हुए हैं, एक जीवन वृक्ष की तरह।
बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर सभी जीव एक ही कॉमन पूर्वज से विकसित हुए हैं तो उनके बीच एक पारिवारिक पेड़ जैसा, एक पदानुक्रमित शाखाओं वाला संबंध दिखना चाहिए, है ना?
हाँ, जैसे हमारा फैमिली ट्री होता है।
ठीक वैसे ही, और यही हमें दिखता भी है जब हम जीवों के शारीरिक बनावट देखते हैं या अब जब हम डीएनए का विश्लेषण करते हैं, तो ठीक यही पैटर्न उभर कर आता है। ये साझा वंश का एक बहुत बहुत मजबूत प्रमाण है। डॉकिंस कहते हैं कि ये पैटर्न विकास के सिद्धांत का एक सीधा पूर्वानुमान था जो सच साबित हुआ है।
किताब के आखिर में डॉकिंस दूसरे विचारों पर भी बात करते हैं, जैसे लैमार्कवाद या फिर रचनावाद, क्रिएशनिज्म। उनका मुख्य तर्क क्या है इनके खिलाफ?
हाँ, वो लैमार्कवाद जैसे पुराने वैज्ञानिक सिद्धांतों को तो साक्ष्यों के आधार पर खारिज करते हैं कि भाई अर्जित गुण अगली पीढ़ी में नहीं जाते। रचनावाद के बारे में उनका कहना है कि वो विज्ञान है ही नहीं।
विज्ञान क्यों नहीं है?
क्योंकि विज्ञान की पहचान है कि वो परीक्षण योग्य, जांची जा सकने वाली भविष्यवाणियां करता है। रचनावाद सिर्फ ये कहता है कि इसे किसी ने डिजाइन किया है, ये नहीं बताता कि कैसे, कब या कोई ऐसी चीज जिसका हम वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण कर सकें। डॉकिंस के लिए ये जटिलता देखकर बस हार मान लेना है। ये उसका स्पष्टीकरण खोजना नहीं, बल्कि ये कहना है कि हम नहीं समझ सकते, इसीलिए ये अलौकिक है।
तो कुल मिलाकर किताब का निचोड़ ये है कि प्राकृतिक चयन ही जीवन की इस अद्भुत जटिलता का एकमात्र ज्ञात वैज्ञानिक स्पष्टीकरण है जो वाकई काम करता है।
हाँ, एकमात्र शक्तिशाली, सुरुचिपूर्ण और सबसे जरूरी साक्ष्यों पर आधारित स्पष्टीकरण।
तो इस पूरी चर्चा से अगर कुछ मुख्य बातें या संदेश निकालने हो तो वो क्या होंगे? मेरे लिए तो सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि कैसे बहुत ही सरल नियमों से बिना किसी मास्टर प्लान के इतनी कमाल की जटिलता पैदा हो सकती है। वो वीजल प्रोग्राम वाला उदाहरण तो एकदम चिपक गया दिमाग में।
हाँ, वो वाकई बहुत प्रभावशाली है। मेरे लिए एक महत्वपूर्ण बात है डिजाइन का भ्रम। डॉकिंस ये नहीं कहते कि जीव डिजाइन किए हुए नहीं लगते। वो मानते हैं कि हाँ, ये भ्रम बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वो फिर उस भ्रम का एक प्राकृतिक वैज्ञानिक स्पष्टीकरण देते हैं। ये हमें प्रकृति को एक नए नजरिए से देखने में मदद करता है। हम उसे अरबों साल के धीमे परीक्षण और त्रुटि वाले प्रोसेस के नतीजे के तौर पर देख पाते हैं, ना कि किसी एक झटके में हुई रचना के रूप में।
और वो वाला विचार कि विकास कोई इंजीनियर नहीं बल्कि एक जुगाड़ू है, जिसे अंग्रेजी में टिंकरर कहते हैं।
हाँ, ये भी बहुत जरूरी पॉइंट है। एक इंजीनियर चीजों को नए सिरे से बिल्कुल परफेक्ट बनाने की कोशिश करता है ना, लेकिन विकास ऐसा नहीं करता। वो जो चीजें पहले से मौजूद हैं उन्हीं के साथ काम करता है, उन्हीं में छोटे मोटे बदलाव करता है, जुगाड़ करता है।
इसीलिए प्रकृति में कई बार हमें थोड़ी अजीब सी या कहें कि खामियों वाली डिजाइन दिखती हैं।
बिल्कुल, जैसे हमारी अपनी आंख का अंधा स्थान, एक परफेक्ट डिजाइनर शायद ऐसा नहीं बनाता। ये इस बात का सबूत है कि ये एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है, कोई एकदम नया डिजाइन नहीं, ये एक जुगाड़ू प्रक्रिया का नतीजा है।
और इससे जुड़ा हुआ एक और संदेश जो मुझे लगता है बहुत काम का है, वो है आलोचनात्मक सोच का विकास, क्रिटिकल थिंकिंग।
हाँ, सही कहा।
ये किताब हमें सिखाती है कि जो चीज हमें बिल्कुल सहज लगती है, इंट्यूटिव लगती है, जैसे कि भाई इतनी जटिल चीज है तो जरूर किसी ने बनाई होगी, उस पर भी सवाल उठाना जरूरी है, सबूत मांगना जरूरी है।
बिल्कुल,
ये हमें उस सोच से बचाता है जिसे अज्ञानता का तर्क कहते हैं, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस, कि चूंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ, इसलिए जरूरी है किसी अलौकिक शक्ति का काम होगा। ये कोई जवाब नहीं है, विज्ञान का काम ही है प्राकृतिक स्पष्टीकरण खोजना, चाहे वो कितने भी जटिल क्यों ना हो।
किताब में कुछ बहुत यादगार कथन भी है। एक तो वही जो सबसे ज्यादा मशहूर है, अंधा घड़ी साज वाला। हाँ, वो लाइन है, प्राकृतिक चयन अंधा घड़ी साज है, अंधा क्योंकि यह आगे नहीं देखता, परिणामों की योजना नहीं बनाता, इसका कोई उद्देश्य नहीं है, फिर भी प्राकृतिक चयन के जीवित परिणाम हमें एक मास्टर घड़ी साज द्वारा डिजाइन किए जाने की उपस्थिति से अभिभूत करते हैं, हमें डिजाइन और योजना के भ्रम से प्रभावित करते हैं। ये वाकई पूरी किताब का सार है।
एक और कथन जो काफी कह सकते हैं विवादास्पद रहा, डार्विन से पहले नास्तिक होना एक हताश आशा थी, डार्विन ने बौद्धिक रूप से संतुष्ट नास्तिक होना संभव बनाया, इसका क्या मतलब समझा जाए?
देखिए, इसका मतलब ये है कि डार्विन से पहले प्रकृति की जो डिजाइन और जटिलता थी वो ईश्वर के अस्तित्व के लिए दिए जाने वाले सबसे मजबूत तर्कों में से एक थी, जिसे आर्ग्यूमेंट फ्रॉम डिजाइन कहते हैं।
हाँ,
क्योंकि उसका कोई और अच्छा वैज्ञानिक स्पष्टीकरण मौजूद नहीं था। डॉकिंस का मानना है कि डार्विन ने पहली बार एक ठोस शक्तिशाली प्राकृतिक स्पष्टीकरण दिया जिसने उस डिजाइन वाले तर्क की बौद्धिक नींव को हिला दिया।
अच्छा,
इसका ये मतलब नहीं कि हर कोई नास्तिक बन जाए, लेकिन इसने एक ऐसा बौद्धिक विकल्प खोल दिया जो पहले मौजूद नहीं था। एक संतुष्टिदायक वैज्ञानिक विकल्प।
अच्छा, इन सब विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना हो सकता है? क्रिटिकल थिंकिंग तो आपने बताई।
हाँ, उसके अलावा ये जो संचयी चयन का सिद्धांत है ना, ये हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग का, समस्या समाधान का एक तरीका सिखाता है।
कैसे?
कई बार बड़ी समस्याओं का हल एक झटके में नहीं मिलता। हमें छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि क्या काम कर रहा है, और फिर उसी पर आगे बढ़ना होता है, धीरे धीरे सुधार करना होता है।
जैसे सॉफ्टवेयर बनाने वाले करते हैं आजकल, एजाइल मेथड।
बिल्कुल। या जब हम कोई नया हुनर सीखते हैं, चाहे वो कोई भाषा हो या कोई वाद्य यंत्र बजाना हो, धीरे धीरे लगातार अभ्यास से ही तो सुधार आता है। प्रकृति भी एक तरह से ऐसे ही सीखती है, लाखों सालों में।
और शायद यह हमें थोड़ा धैर्य रखना भी सिखाता है कि चीजें वक्त लेती हैं, विकास तो लाखों सालों में हुआ है।
एक लंबा नजरिया एक दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य देता है। ये दिखाता है कि छोटे लगातार किए गए प्रयासों में कितनी शक्ति हो सकती है, चाहे वो पढ़ाई हो या अपनी सेहत सुधारनी हो या समाज में कोई बदलाव लाना हो। नतीजे शायद तुरंत न दिखें, लेकिन लगातार कोशिश करते रहने से बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है।
और प्रकृति के प्रति सम्मान भी बढ़ता है ना, जब हम समझते हैं कि ये सब कितनी अद्भुत और कितनी लंबी प्रक्रिया का नतीजा है।
बिल्कुल, एक गहरा जुड़ाव महसूस होता है।
तो इस पूरी बातचीत से अगर मैं पूछूं, आपके लिए सबसे बड़ी सीख या सबसे हैरान करने वाली बात क्या रही?
मेरे लिए शायद सबसे ज्यादा प्रभावशाली ये सोचना है कि कैसे एक अंधी, बिना दिमाग वाली, बिना किसी इरादे वाली प्रक्रिया इतनी ज्यादा क्रिएटिव, इतनी क्रिएटिव हो सकती है। प्राकृतिक चयन सिर्फ कमजोर को छांटता नहीं है, वो नई चीजें भी बनाता है सह विकास के जरिए, जैसे शिकारी और शिकार के बीच की वो अनथीन दौड़। हर कोई बेहतर होता जाता है।
हाँ, ये कमाल की बात है। शेष रचना नहीं, बल्कि उसी प्रक्रिया का हिस्सा जिससे बाकी सब जीव बने हैं। ये हमें प्रकृति से, बाकी जीवों से और ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस कराता है।
सही कहा।
और हाँ, डॉकिंस की विज्ञान को समझाने की कला, मतलब इतने मुश्किल आइडियाज को इतने सरल, इतने दिलचस्प तरीके से बताना, वो अपने आप में एक हुनर है।
बिल्कुल। ये किताब सिर्फ जीव विज्ञान के बारे में नहीं है, ये सोचने के एक तरीके के बारे में है, दुनिया को देखने के एक नजरिए के बारे में है, और ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती है।
और शायद इसी सोच के साथ हम आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं, श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं। अगर विकास वाकई एक अंधा घड़ी साज है, बिना किसी योजना के काम करने वाली प्रक्रिया, तो फिर हम इंसानों के लिए अपने जीवन में उद्देश्य और मायने खोजना, क्या ये भी उसी अंधी प्रक्रिया का ही एक अप्रत्याशित, अनपेक्षित नतीजा है? मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।